नमस्कार भारत, 12 मार्च दिन शनिवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। अपने ही देश के नागरिकों के मानवाधिकार हनन पर घिरे दक्षिणी सूडान के सैनिक, संयुक्त राष्ट्र का आरोप, वेतन के बदले सैनिकों और लड़ाकों को दी जाती है बलात्कार की अनुमति।
The conflict that began in December 2013 has intensified in 2015, particularly in one state, Unity State.
बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद पीएम मोदी की पहली बिहार यात्रा, आरजेडी ने याद दिलाई विशेष पैकेज की।
1,25,000 जो स्पेशल पैकेज उनके द्वारा घोषित है उसका अनुपालन कराने की दिशा में तो लगता है कुछ जरूर बोलेंगे।
और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की नेता सोनी सोरी ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कार्यक्रम में होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अशोक कुमार से। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिणी सूडान में सरकारी सेना से जुड़े लड़ाकों को वेतन के बदले महिलाओं का बलात्कार करने की इजाज़त दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि 2 साल से गृह युद्ध से जूझ रहे दक्षिणी सूडान में सेना आम लोगों की हत्याएं और बलात्कार करती है जो युद्ध अपराध के बराबर हैं। वहीं दक्षिणी सूडान की सरकार ने इन आरोपों से इनकार किया है। अमेरिका ने सीरिया की सरकार पर 2 हफ्ते पुराने संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने देरा और एलेपो में प्रदर्शनकारियों पर हवाई हमले होने की बात कही है, लेकिन उन्होंने कहा कि मोटे तौर पर संघर्ष विराम पर अमल हो रहा है। इससे पहले सीरिया के मुख्य विपक्षी गठबंधन ने घोषणा की कि वो शांति वार्ता के लिए होने वाले अगले प्रयास में शामिल होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहली बार एक प्रस्ताव मंजूर किया है जो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटेगा। प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून की इस योजना को स्वीकार कर लिया गया है कि अगर उत्पीड़न के विश्वसनीय सबूत हों तो उस सैन्य टुकड़ी या पुलिस टुकड़ी को वापस भेज दिया जाए। सुरक्षा परिषद के 14 सदस्यों ने प्रस्ताव के हक में वोट दिया, जबकि मिस्र इससे दूर रहा। संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत समंता पावर ने कहा,
The resolution underscores that peacekeepers found guilty,
ये प्रस्ताव इस बात को रेखांकित करता है कि शांति सैनिक दोषी पाए गए हैं, सिर्फ अभियुक्त नहीं हैं, यौन उत्पीड़न के दोषी पाए गए हैं और उन्हें संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में रहने का कोई हक नहीं है। ये उन देशों के लिए संदेश है जो अपने दोषी सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। साथ ही ये यूएन के सभी सदस्य देशों के लिए भी संदेश है कि ऐसे मामलों में पूरी जाँच हो और तेजी और निष्पक्षता से कदम उठाए जाएँ। ये थे संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत समंता पावर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका में पुलिस ने कहा है कि रिपब्लिकन पार्टी में उम्मीदवारी के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप की रैली में 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मिसूरी में एक रैली के दौरान ट्रंप के भाषण में बार बार बाधा पहुंचाई गई। इन लोगों में ज्यादातर काले या हिस्पानी समुदाय के लोग हैं। पुलिस ने इन लोगों को वहां से बाहर कर दिया। अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला नैन्सी रीगन का कैलिफोर्निया में अंतिम संस्कार हो रहा है। रविवार को 94 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। और सऊदी गृह मंत्रालय का कहना है कि पुलिस ने पिछले महीने हुई चरमपंथ निरोधी विभाग से जुड़े एक अधिकारी की हत्या के सिलसिले में 6 लोगों को मुठभेड़ में मार दिया है। पुलिस को इन लोगों की तलाश थी और राजधानी रियाद के पास एक पहाड़ी के इलाके में पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई। बीबीसी समाचार।
तारीख 12 मार्च दिन शनिवार। नमस्कार, भारत में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, आपसे थोड़ी देर पहले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहली बार उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है जिसमें यौन प्रताड़ना के मामले में शांति रक्षक सैनिकों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने प्रस्ताव में कहा था कि अगर शांति रक्षक सैनिकों की ओर से यौन प्रताड़ना के पुख्ता सबूत मिलते हैं तो पूरी टुकड़ी को वहां से हटा दिया जाएगा। सुरक्षा परिषद के 14 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया। सिर्फ मिस्र ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। और अब चर्चा इसी से जुड़ी हुई खबर की बात करते हैं, अफ्रीकी देश दक्षिणी सूडान की, जो 2011 में अस्तित्व में आया लेकिन पिछले 2 सालों से ये देश गृह युद्ध का शिकार है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हालात ये है कि सेना और उससे जुड़े लड़ाकों को वेतन के बदले खुलेआम लड़कियों का बलात्कार करने की अनुमति दी जा रही है। हत्या, अपहरण और लूटपाट के जरिए लोगों में आतंक फैलाया जा रहा है और इसके लिए वहां की सरकार को जिम्मेदार बताया गया है। हालांकि दक्षिणी सूडान की सरकार ने इस आरोपों से इनकार किया है और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए अशोक कुमार से।
पांच साल भी नहीं हुए हैं जब 2011 में सूडान से अलग होकर दक्षिणी सूडान एक अलग देश बना। उत्साह और उमंग के बीच वहां की जनता ने बराबरी, तरक्की और खुशहाली के सपने देखे, लेकिन बीते 2 साल से जारी गृह युद्ध में ये सपने तार तार हुए हैं। देश की सेना पर अपने ही लोगों की हत्या और बलात्कार के संगीन आरोप लग रहे हैं। हालात कितने गंभीर हैं ये बात संयुक्त राष्ट्र की एक ताज़ा रिपोर्ट से पता चलती है। रिपोर्ट कहती है कि सेना और उससे जुड़े लड़ाकों को वेतन के बदले महिलाओं का बलात्कार करने की इजाज़त दी जा रही है और दक्षिणी सूडान के यूनिटी राज्य में पिछले 1 साल के दौरान 1300 महिलाओं का बलात्कार किया गया। रिपोर्ट कहती है कि सरकारी सेना न सिर्फ आम लोगों की हत्याओं में शामिल है बल्कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और लड़कियों से सरेआम सामूहिक बलात्कार होता है। विरोधी पक्ष के लड़ाके भी ऐसी ही घटनाओं में शामिल बताए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली टीम के संयोजक डेविड मार्शल कहते हैं,
The conflict that began in December 2013 has intensified in 2015, particularly in one state, Unity State.
संकट दिसंबर 2013 में शुरू हुआ जो 2015 में गहरा गया, खासकर यूनिटी राज्य में जहां सरकार सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के जरिए लोगों को बेघर कर रही है, उनकी हत्याएं करा रही है, अपहरण करा रही है, लूटमार करा रही है, जिसका नतीजा है कि वहां बहुत आतंक है। ये थे यूएन की टीम के संयोजक डेविड मार्शल के शब्द। वहीं दक्षिणी सूडान की सरकार ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है, लेकिन उसका ये जरूर कहना है कि इस मामले की जांच हो रही है। दक्षिणी सूडान के राजनयिक जिमी डेंग मकाओ संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हैं।
Well, the question is, how do you know the difference between the government and the rebels? Is it...
सवाल ये है कि आप सरकार और विद्रोहियों के बीच अंतर कैसे करते हैं। दक्षिणी सूडान में तो संकट चल रहा है और सरकारी बल और विद्रोही दोनों ही एक तरह की वर्दी पहनते हैं, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये अपराध सरकार कर रही है? ये थे दक्षिणी सूडान के राजनयिक जिमी डेंग मकाओ के शब्द। इस गृह युद्ध की शुरुआत 2013 में तब हुई जब राष्ट्रपति सल्वा कीर ने अपने उपराष्ट्रपति रीक माशर को हटा दिया और उन पर तख्ता पलट की साजिश रचने का आरोप लगाया। माशर ने इस आरोप को तो ठुकरा दिया, लेकिन तभी से उनकी बनाई विद्रोही सेना सरकार से लड़ रही है। इन 2 सालों के दौरान दसियों हजार लोग मारे गए हैं, जबकि 20 लाख से ज्यादा बेघर हुए हैं। दक्षिणी सूडान तेल के संसाधनों से मालामाल है, लेकिन ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। बरसों तक आजादी के लिए सूडान से लड़ने वाले दक्षिणी सूडान के लाखों लोग आज आपस में एक दूसरे का खून बहा रहे हैं और इसकी वजह बताई जाती है देश के 2 सबसे बड़े जातीय गुटों न्यूएर और डिंका की आपसी दुश्मनी। राष्ट्रपति सल्वा कीर डिंका समुदाय से हैं, जबकि बाशर न्यूएर हैं, और इन दोनों की दुश्मनी में दक्षिणी सूडान गृह युद्ध की आग में जल रहा है।
और अभी अभी अमेरिका से खबर आ रही है कि राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी हासिल करने की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप ने सुरक्षा कारणों से शिकागो में होने वाली अपनी रैली रद्द कर दी है। ट्रंप के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों के बाद ट्रंप ने पुलिस से मुलाकात की और फिर रैली रद्द करने का फैसला किया। और चलिए अब रुख करते हैं भारत की ओर। विवादों की छाया में श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के बहुचर्चित कार्यक्रम विश्व सांस्कृतिक महोत्सव की कल शुरुआत हो गई। कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने संबोधन में आलोचकों को आड़े हाथों भी लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास वो सांस्कृतिक विरासत है जिसकी तलाश दुनिया भर को है, लेकिन हम खुद को ही कोसते रहते हैं। दूसरी ओर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 5 करोड़ रुपये के जुर्माने के भुगतान के लिए 3 हफ्ते का वक्त दे दिया है। वात्सल्य राय की रिपोर्ट।
तन को डुलाने वाला संगीत तो बाजार भरा पड़ा है, लेकिन मन को डुलाने वाला संगीत तो हिंदुस्तान में भरा है। और दुनिया अब मन को डुलाना चाहती है, और यही संगीत की साधना है जो दुनिया के मन को डुला।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश विश्व सांस्कृतिक महोत्सव के उद्घाटन मौके पर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के पास वो सांस्कृतिक विरासत है जिसकी तलाश दुनिया को है, लेकिन हम खुद को कोसते रहेंगे तो दुनिया हमारी ओर क्यों देखेगी। मोदी ने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और आर्ट ऑफ लिविंग की जमकर तारीफ भी की।
मैं श्रीमान श्री श्री रविशंकर जी का इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि 35 साल से छोटे से कार्यकाल का ये मिशन दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में इसी ताकत के भरोसे आप फैल चुका है, उन देशों को अपना कर चुका है।
आर्ट ऑफ लिविंग के 35 वर्ष पूरे होने पर आयोजित 3 दिवसीय ये कार्यक्रम शुरुआत के पहले ही कई विवादों में घिर गया था। पर्यावरण की अनदेखी के सवाल पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आयोजकों पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। आयोजकों की अपील पर कल ट्रिब्यूनल ने जुर्माने के भुगतान के लिए 3 हफ्ते की मोहलत दे दी। इसके पहले कल ही ये मुद्दा संसद में भी उठा। जनता दल यूनाइटेड के नेता शरद यादव ने सवाल किया कि क्या श्री श्री रविशंकर सिस्टम से ऊपर हैं? वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने महोत्सव से इकोलॉजिकल सिस्टम को हो रहे नुकसान का मुद्दा उठाया। सरकार की तरफ से केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। श्री श्री रविशंकर ने उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान आलोचकों को जवाब दिया। उन्होंने इस कार्यक्रम को प्राइवेट पार्टी बताए जाने को लेकर कहा।
किसी ने कहा ये गुरुजी का प्राइवेट पार्टी है, तो हमने कहा बिल्कुल, ताकि पूरा संसार मेरा परिवार है।
कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर हुई बारिश के बावजूद आयोजक उत्साह में दिखे। महोत्सव के दूसरे दिन यानी आज विभिन्न धर्मों के 2000 प्रतिनिधि एक साथ विचार विमर्श करेंगे। आयोजन समिति के मीडिया कोऑर्डिनेटर कार्तिक कृष्णा ने बताया,
द मेन प्रोग्राम जो आज है क्लोज टू 2023 लीडर्स साथ में आने वाले हैं, अलग अलग धर्मों के गुरु इसमें होंगे।
महोत्सव के दूसरे दिन कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, इनमें 8,500 संगीतकारों की एक साथ प्रस्तुति प्रमुख होगी।
और अब चर्चा बिहार की। बिहार चुनाव में भाजपा को मिली करारी शिकस्त के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। वे बिहार में रेलवे और सड़क पुल का उद्घाटन करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे से पहले बिहार की सत्ताधारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल उन्हें चुनाव के दौरान राज्य के लिए घोषित किए गए विशेष पैकेज की याद दिला रही है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने राज्य सरकार के वित्त मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी से इस बारे में बात की और सबसे पहले पूछा कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं।
ऐसा है कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री बिहार के जगह जगह दौरे किया था, उन्होंने जो तकरीर की थी उन्होंने और बिहार की जनता को जो आश्वस्त किया था उन्होंने, अंतोगत्वा उन्होंने कहा कि 1,25,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज बिहार को हम दे रहे हैं, तो हम लोगों को अपेक्षा था कि वो पैसा अब तक आ जाना चाहिए था, और या नहीं तो उसको बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए था। तो प्रधानमंत्री तो गलत नहीं बोलते हैं, 1,25,000 जो स्पेशल पैकेज उनके द्वारा घोषित है उसका अनुपालन कराने की दिशा में तो लगता है कुछ जरूर बोलेंगे, नंबर एक। नंबर दो, वो कहते थे कि साहब बिहार पिछड़ गया है, बिहार को जो है गुजरात की तरह हम बना देंगे। तो हम लोगों का डिमांड सिर्फ इतना ही है कि साहब आप हमको स्पेशल फैसिलिटीज भी दीजिएगा, तब भी हमको गुजरात के बराबर में एक दशक दो दशक लगेंगे। मगर फिर भी आपकी नीयत अच्छी है, आप चाहते हो कि अपने गुजरात के तरह बिहार भी बने। हम लोग ये अपेक्षा करेंगे कि प्रधानमंत्री जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी घोषणा करेंगे। तीसरी बात यह है कि जो बिहार है इसका ज्योग्राफिकल ऐसा है कि नेपाल से जुड़ा हुआ है, नेपाल हमारी सीमा है एक तरफ, तो जो बारिश हमारे यहाँ नहीं भी हो और नेपाल अगर पानी छोड़ देता है तो हम फ्लडेड हो जाते हैं। तो हम लोग बार बार कहते आए हैं ऐसे मामले में हमको उसमें भी मदद मिलना चाहिए, और चूंकि हम डायरेक्ट नेपाल से वार्ता नहीं कर सकते हैं, देश टू देश वार्ता होती है, तो हम अपेक्षा करते हैं कि प्रधानमंत्री उस दिशा में भी कुछ बोलेंगे।
ये सारी मांगे जो आज आपने रखी हैं, ये राज्य सरकार की तरफ से पहले भी उठती रही हैं। प्रधानमंत्री आपके बीच में होंगे, क्या राज्य सरकार की ओर से कोई ऐसा मांग पत्र भी प्रधानमंत्री को दिया जाएगा?
ऐसा है कि अब चूंकि वो आ रहे हैं जिस कार्यक्रम में, वो रेल सड़क पुल के उद्घाटन में आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि वो उसका शिलान्यास जब हमारे लालू जी नेता थे तो उन्होंने जो है उसमें राशि भी दी थी और में जो है सड़क पुल उन्होंने जोड़ा था। मगर औपचारिक बैठक माननीय मुख्यमंत्री के साथ क्या है वो मुझको जानकारी नहीं है, इसलिए हम उस बाबत कुछ नहीं कह सकते हैं। और हम लोगों की आदत यह भी नहीं है कि अगर वो किसी कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं तो हम प्लेट और बोर्ड लगा के खड़े रहेंगे कि साहब वादा पूरा करो।
जैसा कि आपने अभी सुना कि नरेंद्र मोदी बिहार दौरे के क्रम में रेलवे पुल का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा से बात की।
ये लंबे समय से बिहार के लोग इस पुल के निर्माण का इंतजार कर रहे थे। दीघा स्थान है पटना के पास, और इस पुल के बन जाने के बाद उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार सीधे रेल सेवा से जुड़ जाएगा। और केवल एक पुल का लोकार्पण नहीं है बल्कि तीन कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के रेलवे के। एक दीघा पुल लोकार्पित करेंगे वो बिहार को या राष्ट्र को। दूसरा मुंगेर में गंगा नदी पर रोड ब्रिज बना है, उस पर पहली बार इंजन रोल ऑफ होगा, माने इस पार से उस पार जाएगा। और तीसरा मोकामा में भी एक नए पुल के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। तो ये तीन कार्यक्रम है, और मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी जी की सरकार बनने के कारण ही ये संभव हो सका है कि काफी मात्रा में धन इन परियोजनाओं को दे करके इसे समय से पूरा किया गया है।
ये परियोजनाएं तो लंबे समय से चल रही थी और
गति से परियोजनाएं चल रही थी, शायद 4-5 वर्ष और लगते इनको पूरा होने में। मोदी सरकार आने से उसका लाभ यही हुआ है बिहार को कि ये कम समय में पूर्ण आवंटन करके पूरी कर ली गई।
राज्य सरकार की ओर से कई और मांग पत्र भी तैयार हैं और वो कह रहे हैं कि बिहार के हक की मांग की जाएगी। जो पैकेज का ऐलान किया था मोदी जी ने चुनाव के वक्त, उसकी भी मांग की जाएगी।
उनका ज्ञापन मिलने दीजिए फिर उस प्रक्रिया दी जाएगी। लेकिन बिहार के संदर्भ में जिस पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी वह निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। वो कमिटमेंट है बिहार की जनता से और देश से, तो उसमें कोई राजनीतिक सौदेबाजी करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है शब्द से उसका पालन करेगी सरकार।
बिहार के वित्त मंत्री से कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी अब्दुल बारी सिद्दीकी, वो कह रहे थे कि बजट में उस पैकेज को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
नहीं, बजट से उस पैकेज का कोई मतलब नहीं है। जिन जिन चीजों की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है उन उन परियोजनाओं के लिए उतना धन निश्चित मिला जाएगा, इसमें बजट में विशेष रूप से उल्लेख करने की जरूरत नहीं होती है।
रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा से बात कर रहे थे वात्सल्य राय।
बीबीसी इंडिया बोल।
क्या कॉर्पोरेट सेक्टर को सरकार की अंधाधुंध मदद से अर्थव्यवस्था का नुकसान हो रहा है? औद्योगिक घरानों को बिना जमानत अरबों रुपए का बैंक लोन, मगर कर्ज में डूबा किसान आत्महत्या पर मजबूर। हजारों करोड़ रुपए का कर्ज चुकता किए बिना उद्योगपति विजय माल्या को देश से बाहर जाने की छूट कैसे मिली? इस बार इंडिया बोल का यही है विषय। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 12 मार्च शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन कीजिए 1811 7000 और 1811 102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
उद्योगपति विजय माल्या के देश छोड़ने पर संसद में कल भी विपक्ष और सरकार के तेवर कड़े रहे। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने आईडीबीआई बैंक और निष्क्रिय हो चुकी किंगफिशर कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ की। कल दिन भर के घटनाक्रम की जानकारी दे रही हैं दिव्या आर्य।
विजय माल्या के देश छोड़ने से उठे विवाद के दूसरे दिन जांच की कार्रवाई की गति तेज हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों और निष्क्रिय हो चुकी किंगफिशर कंपनी के सीएफओ ए रघुरामन से कई घंटे पूछताछ की कि कैसे आईडीबीआई के बैंक लोन का एक हिस्सा देश के बाहर ले जाया गया। ये जांच भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम के 9000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज नहीं चुका पाने के मामले में माल्या के खिलाफ कोर्ट और ट्राइब्यूनल में अपील के तहत की जा रही है। वहीं संसद में फिर विपक्ष ने सरकार पर माल्या को देश छोड़ने देने का आरोप लगाया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा,
सीबीआई ने इमिग्रेशन अधिकारियों को जानकारी दी थी कि अगर विजय माल्या देश छोड़ने का प्रयास करें तो उन्हें रोक दिया जाए। इसके ठीक एक महीने बाद सीबीआई ने ये ऑर्डर बदल दिया और इमिग्रेशन से कहा कि रोकने की बजाय सिर्फ सीबीआई को सूचना देनी होगी।
सरकार की ओर से अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोपों का सीधा जवाब देने के बजाय क्वात्रो की मामले का हवाला दिया और आश्वासन दिलाया कि माल्या से बकाया राशि निकलवा ली जाएगी।
विजय माल्या के बारे में बहुत स्पष्ट तौर से सरकार ने कहा है कि देश का आना पाई देश को वापस लगाया जाएगा, उसको कटौती की तरह कंसेशन देने वाले नहीं है। इसलिए अगर उनका इस तरह का अनुभव है तो उस अनुभव के आधार पर अगर कोई बात कह रहे हैं तो आई एम वेरी सॉरी, हम उनको स्पष्ट
अपॉर्चुनिटी
उस तरह की छूट नहीं देने वाले हैं जिस तरह से उन्होंने कटौती को दी थी।
आखिर में समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल की मांग पर राज्यसभा में सांसद के तौर पर दूसरा कार्यकाल निभा रहे विजय माल्या का मुद्दा करण सिंह की अध्यक्षता वाली एथिक्स कमेटी को भेज दिया गया।
वो तारीख बताएं कौन तारीख को हिंदुस्तान आ रहे हैं, जब ये ट्वीट करते तो ये भी ट्वीट कर दें कि हम इस तारीख को हिंदुस्तान आ रहे हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे। जिस तरह वो 7-8 बैग लेके भागे हैं उससे तेज साबित हो रहा है कि सरकार की शह से वो देश छोड़ के चले गए। अगर 1,000 रुपये घूस के आधार पर लोकसभा में सदस्यों की सदस्यता जा सकती है तो 9,000 करोड़ रुपए जो सरकार का मार ले उसकी सदस्यता बची रहे, ये फिर संशय है।
इससे पहले शुक्रवार तड़के विजय माल्या ने ट्विटर के जरिए अपनी सफाई रखी। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी हैं, भारत आते जाते रहते हैं और भारत से भागे नहीं हैं, न ही वो भगोड़ा हैं। उन्होंने कहा कि एक भारतीय सांसद होने के नाते वो कानून का सम्मान और इसका पालन करते हैं, लेकिन मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। अपनी संपत्ति के बारे में उठाए जा रहे सवालों पर माल्या ने ट्वीट किया कि संसद में उनकी सभी संपत्तियों की जानकारी मौजूद है। ताज़ा खबरों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने अब आईडीबीआई लोन धोखाधड़ी मामले में विजय माल्या को ही 18 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है। दिव्या आर्य, बीबीसी दिल्ली।
वो अपने देवताओं के लिए रोते हैं।
मैं शिव शंकर भोलेनाथ का बाबा, भोलेनाथ का शंकर, इस बाबे का मैं अपनी जान दे सकता हूँ इस बाबे के लिए।
वो अपनी बिखरी धरोहर को सहेजना चाहते हैं।
इसका सारा जो ये मंदिर है ये सारा डैमेज हो गया था, फिर हमने हमारी संस्था ने हमारी
वो याद करते हैं खौफ भरी रातों को।
अगर बिल्ली भी हमारे ऊपर वाले मंजिल में चल रही होती तो हमें ये लग रहा था कि आ गए वो मिलिटेंट, आ गए तो वो हमें मार डाल देंगे।
और जिन्होंने बंदूक उठाई,
भाई देखिए मैं तो हर बच्चे से यही कहूंगा भूल कर भी हथियार मत उठाना क्योंकि हमने इस जहर को पिया हुआ है, हम मेरे बच्चों हमने इस जहर को पिया हुआ है।
पोस्ट कार्ड अपनी धरती से उखड़े 5 कश्मीरी पंडितों के।
रक्त रंजित नृत्य करते हर गली चौराहे और सड़क पर लोग खेल खेल में इकट्ठा।
मैं खुद को अपने घर के बरामदे में तैरता सा देखता हूँ।
इनका भी कश्मीर, बीबीसी हिंदी रेडियो की खास पेशकश। सोमवार 14 मार्च से रोजाना शाम 7:30 बजे दिन भर में और सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में।
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का, अशोक कुमार के साथ। जी अशोक।
جی پنکج جی, آج دلی سے چھپنے والے سبھی اخباروں میں شری شری روی شنکر کا کاریکرم ہی پہلی خبر ہے جس کا ادگھاٹن کل پردھان منتری نریندر مودی نے کیا. مودی نے اپنے بھاشن میں کہا کہ ہم خود کو ہی کوستے رہیں گے تو دنیا ہمیں کیا دیکھے گی. اسی بات کو دینک جاگرن, نبھا ٹائمز اور نئی دنیا نے اپنی سرخی بنایا ہے. وہیں جنستا لکھتا ہے, این جی ٹی کی نگاہ میں کھٹکے, شری شری کو ملا مودی کا ساتھ. دا ہندو لکھتا ہے, ایٹ شری شری ایونٹ مودی اٹیکس کریٹکس آف ہیریٹیج, یعنی شری شری کے آیوجن میں مودی نے وراثت کے آلوچکوں پر حملہ بولا. تو امر اجالا نے اس کاریکرم کو میگا شو بتایا اور اس کی رنگا رنگ تصویریں اپنے پہلے پنے پر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں چھپی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اسٹیٹس مین کے پہلے پنے پر سب سے نیچے خبر ہے, پاک ٹیم ٹو کم فور ورلڈ کپ, یعنی پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے آئے گی بھارت. امر اجالا لکھتا ہے کہ انشچتا ختم ہو گئی ہے اور بھارت نے دیا سرکشا کا پورا بھروسہ,
اور آج ان کے پہنچنے کی بھی سمبھاونا
جی, آج میچ بھی ہونا ہے کولکاتا میں بنگال کے خلاف, وارم اپ میچ. ہندوستان اس پر لکھتا ہے کہ پاک ٹیم بھارت آنے کو تیار. آر ایس ایس کالز فار اسٹرکٹ ایکشن اگینسٹ کوٹ ان کوٹ اینٹی نیشنل فورسز ان یونیورسٹیز, یعنی آر ایس ایس نے وشو ودیالوں میں راشٹر ویرودھی بلوں کے خلاف کڑے قدم اٹھانے کی مانگ کی ہے. یہ خبر ہمیں دکھ رہی ہے انڈین ایکسپریس کے پہلے پنے پر. وہیں وجے مالیا سے جڑی خبریں بھی سبھی اخباروں میں ہیں. دینک جاگرن کی سرخی ہے, شکنجا کسنے کے لیے ایجنسیوں نے ہاتھ ملایا, ای ڈی نے مالیا کو بھیجا سمن, 18 مارچ کو ممبئی میں حاضر ہونا ہوگا. وہیں انگریزی اخبار ہندوستان کی خبر ہے, وپکش نے سرکار پر آروپ لگایا کہ وہ مالیا کے معاملے میں نرمی برت رہی ہے.
بہت بہت شکریہ اشوک آپ کا. عام آدمی پارٹی کی نیتا سونی سوری نے آروپ لگایا ہے کہ بستر کے آئی جی پولیس شیورام پرساد کلوری کے اشارے پر ان پر بستر میں حملہ کیا گیا تھا. پوری رپورٹ سنیے آلوک پرکاش پتل سے.
آدیواسی نیتا سونی سوری پر پچھلے مہینے 21 فروری کو بستر کے باستانار علاقے میں اس سمے حملہ کیا گیا تھا جب وہ اپنی ایک سہیوگی کے ساتھ اپنے گھر لوٹ رہی تھیں. حملہوروں نے ان کے ساتھ دھکا مکی کی اور پھر ان کے چہرے پر کوئی جولنشیل پدارتھ مل دیا گیا تھا. استھانیہ پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے چہرے پر کالک پوتی گئی ہے, لیکن بعد میں سونی سوری کی حالت گمبھیر ہوتی چلی گئی اور انہیں علاج کے لیے دلی لے جانا پڑا. شکروار کو جب سونی سوری دلی سے رائے پور پہنچی تو انہوں نے آروپ لگایا کہ بستر کے آئی جی پولیس شیورام پرساد کلوری کے اشارے پر ان پر حملہ کیا گیا تھا. انہوں نے آروپ لگایا کہ پولیس نے ان کی بہن اور بہنوئی اجے مرکام کا اپہرن کر لیا تھا, جنہیں دیر رات چھوڑا گیا, لیکن ان کے پورے پریوار کو کتھت روپ سے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے.
اجے کی ماں, میرے پتا اور اجے کی دیدی اور اجے کے جیجا یہ سب آئے تھے کل آڈیشن ملنے کے لیے کہ کل سے آپ نے اس طرح سے اٹھوا لیا ہے, کیا بات ہے, کیا ہوا ہے, کیوں نہیں چھوڑ رہے کر کے. ملنے کے بعد کلوری نے بہت گالی دی ہے میرے پتا کو, وہ میرے بارے میں بہت گندی شبد بولے.
سونی سوری کے ان آروپوں کے بعد استھانیہ پترکاروں نے بستر کے آئی جی پولیس شیورام پرساد کلوری سے سمپرک کر ان کا پکش جاننے کی کوشش کی. چھتیس گڑھ اخبار کے سمپادک اور راجیہ کے ورشٹھ پترکار سنیل کمار نے اس مدے پر وستار سے خبر پرکاشت کی ہے. ہم نے ان سے جاننا چاہا کہ سونی سوری کے آروپوں کو لے کر بستر کے آئی جی پولیس شیورام پرساد کلوری نے کیا ٹپنی کی اور وہ اس پورے پرکرن کو کس طرح دیکھتے ہیں.
کلوری کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک باجارو عورت کے کہے ہوئے پر کوئی ٹپنی کرنا نہیں چاہتے. میرا یہ ماننا ہے کہ سرکار کے کسی بھی افسر کے لیے کسی بھی مہیلا کے بارے میں اس زبان کا استعمال کرنا اس کی سرکاری نوکری کی سیوا شرطوں کے سخت خلاف ہے, اور راجیہ سرکار اگر کلوری کے اوپر ایسی باتوں کو لے کر ایسی حرکتوں کو لے کر کاروائی نہیں کرتی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ وہ کلوری کی ایسی حرکتوں کو ایک طرح سے منظوری دے رہی ہے.
حالانکہ راجیہ کے گرہ منتری اجے چندراکر کا کہنا تھا کہ آئی جی پولیس شیورام پرساد کلوری نے جو بھی ٹپنی کی ہے وہ ان کا ویکتیگت معاملہ ہے.
کلوری اور ان کے بیچ میں کیا سمبندھ ہے اس کو چھوڑ دیجیے, ویکتیگت استر پر بات ہے اس کو میں کاؤنٹ نہیں کروں گا. میں گرہ منتری بول رہا ہوں, میں اس کی ہر مدد کروں گا, میرے سیدھے بات کرنے کے لیے بولیے.
راجیہ کے گرہ منتری اجے چندراکر کی صلاح ہے کہ سونی سوری سیدھے ان سے بات کریں. آلوک پتل, بی بی سی, چھتیس گڑھ.
اور اب کاریکرم کے انت میں سنیے پرمکھ سماچار.
بی بی سی سماچار. سنیکت راشٹر کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دکشنی سوڈان میں سرکاری سینا سے جڑے لڑاکوں کو ویتن کے بدلے مہیلاؤں کا بلاتکار کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. امریکہ نے سیریا کی سرکار پر دو ہفتے پرانے سنگھرش ویرام کا الگھن کرنے کا آروپ لگایا ہے. حالانکہ ودیش منترالے کے پروکتا نے کہا ہے کہ موٹے طور پر سنگھرش ویرام پر عمل ہو رہا ہے. سنیکت راشٹر سرکشا پریشد نے پہلی بار ایک پرستاؤ منظور کیا ہے جو سنیکت راشٹر شانتی سینکوں دوارا किए गए यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के बारे में है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी में उम्मीदवारी के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने सुरक्षा कारणों से शिकागो में होने वाली अपनी रैली को रद्द कर दिया है। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। स्टूडियो संभाला राजेश चौहान ने। पंकज प्रियदर्शी और अशोक कुमार को अनुमति दीजिए, 8 बजे विश्व भारती में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।